मेरे बहुत बहुत प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप हमारे ग्रंथों को उठा करके देखिए। ग्रंथ में एक प्रसंग आया है उपनिषद में कि एक राजा की सवारी निकली हुई थी और उसी समय उस गांव में जो लड़का स्नातक करके आया था, पढ़ के आया होगा नालंदा तक्षशिला वगैरह से, उस समय हमारी यही यूनिवर्सिटी थी, उसकी भी गांव वाले सम्मान कर रहे थे, तो उसकी भी सवारी निकली हुई थी। दोनों मेन रोड पर पहुंच गए और आमने सामने हो गए। अब एक को सड़क से नीचे उतरना था कि दूसरा वाला जा सके, साइड देना था। अब कौन साइड दे? तो वहां जो मंत्रिमंडल था वो बैठा और उसने ये फैसला किया कि राजा साइड देगा और स्नातक, ये स्नातक है, डिग्री स्नातक नहीं है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो। क्या करने जा रहे हो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको चीजों को देखने के अपने एंगल को बदलना पड़ेगा। अगर आप दूसरों की तरह ही चीजों को देखेंगे, दूसरों की तरह ही चीजों को एनालाइज करेंगे, तो फिर आपको भारत सरकार इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों सौंपेगी? सौंपनी चाहिए क्या? आप ये बताइए कि अगर आप अपने घर से कुछ दिनों के लिए, एक महीने के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं और आप अपने घर की चौकीदारी किसी को सौंपना चाह रहे हैं, कि आपके गांव में मान लीजिए कि बहुत चोरी वोरी होती, तो आप एक आदमी को जिम्मा सौंप देना चाह रहे हैं। किसी मरियल आदमी को सौंप देंगे क्या, जिसको एक थप्पड़ मारे तो पता न लगे कहां चला गया? सौंप देंगे अपने घर की कि भैया तुम मेरी रखवाली करना? नहीं सौंपेंगे ना। देखेंगे भैया हट्टा कट्टा हो, आए तो दो चार लोगों का मुकाबला कर सके। फिर ये भी देखेंगे भैया तेरे पास डंडा वंडा तो है, अगर पिस्तौल हो तो और अच्छी बात है। देखेंगे ना सब, तब तो आप सौंपेंगे। ये थोड़ी कि जो आ गया उसको सौंप देंगे। तो आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रही है सरकार, और आपको मालूम नहीं है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक सिविल सर्वेंट बनना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, आगे जाकर के आपको धीरे धीरे पता लगेगा। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत जरूरी हो जाता है कि चीजों को आप नए पर्सपेक्टिव से देखें। तो वो जो सामान्य व्यक्ति है, याद रखिए कि वो ग्रेजुएट है, और ग्रेजुएट क्या होता है वो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन लोगों में मुश्किल ये है कि डिग्री का मतलब है ग्रेजुएशन। एलिजिबिलिटी तो आपकी हो गई, वैधानिकता आपको मिल गई, नो डाउट, लेकिन आप सर्वाइव नहीं करेंगे। युद्ध क्षेत्र में क्या कहते हैं, लकड़ी और मिट्टी से बनी हुई तलवारें सबसे पहले टूटती है, बाहर हो जाएंगे वहां, और उससे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी देश और इसी समाज के पास अच्छे खासे मजबूत इस्पाती तलवार है, तो चुन लेना उनको, उसके पास कमी नहीं है। तो यहां जो समस्या होगी, जो प्रॉब्लम हो रही है, जो नुकसान होगा वो आपका होगा, और इस नुकसान का सीधा सीधा कारण यह है कि आप जो सिविल सर्विस का जो सिलेबस है, जो रिक्वायरमेंट है, जो उसका रोड मैप होना चाहिए, उसको ठीक से समझ नहीं पा रहे। तो आपको सिविल सर्विस का रोड मैप भी बताओ। ये सीधे किताब खोल करके रट लेने की परीक्षा नहीं है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि आप यूनिवर्सिटी में यही करते हैं और टॉप भी कर जाते हैं। तो जो आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, याद रखिए, तो पर्सपेक्टिव चेंज ही इस बात से होता है कि आप अपने आप को कितना ज्यादा भुला सकते हैं। अगर आप लोग सच में ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, तो सैटरडे के क्लिपिंग्स में मैंने एक बिजनेस स्टैंडर्ड का क्लिपिंग्स डाला है, जिसमें स्पेन में एक आंदोलन शुरू हुआ है जो रूट पकड़ रहा है, उसका आपने कोई नाम बता सकता है? राइट टू फॉरगेटन। 225 स्टूडेंट में 200 स्टूडेंट क्लिपिंग्स पढ़ रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, लेकिन जवाब एक से मिल रहा है। तो अगर मुझे एक व्यक्ति को चुनना हो और मैं उनको चुन लूं, तो क्या मैं गलत करूंगा? क्या मैं बाकी 199 के साथ अन्याय कर रहा हूं? नहीं कर रहा। अब सिविल सर्विस में ये जो राइट ऑफ टू फॉरगेटन, भूल जाने का अधिकार पर बात हो रही है स्पेन में, और वो क्लिपिंग्स मैंने डाला है, अंडरलाइन किया है, मुझे याद है, क्योंकि यही यूनिक है। यही जब मैं सिविल सर्विस में जब आंसर लिखूंगा, तो 10,000 लोगों के बीच में मुझे आधा नंबर अधिक मिल जाए, 0.25 मार्क्स मिल जाए, इसी के लिए तो सारा संघर्ष है। मिल्खा सिंह केवल ये देखने के लिए पीछे मुड़ गया कि पीछे वाला कितना पीछे है, तो पता लगा कि पीछे वाला आगे निकल गया। अभी मैं आपको एनालिसिस दिखाऊंगा नंबर के, तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि बाप रे ये एनालिसिस से मार्क्स के, मैं स्कोर के आपको एनालिसिस दिखाऊंगा, तब तो आप समझ पाएंगे कि सब सिविल सर्विस क्या है और आपको उसके अकॉर्डिंगली कैसे तैयारी करनी चाहिए। अगर सच में सिविल सर्विस एक युद्ध है और है ही, तो क्या कोई भी युद्ध बिना पूर्व रणनीति के जीती जा सकती है? बताइए, क्या आपको वो रणनीति मालूम है? क्या आपके पास अपनी कोई रणनीति है? अगर यूपीएससी ने आपको 4 अटेम्प्ट दिए हैं तो क्या ऐसे ही दे दिए हैं? अगर 2020 के मैच में 120 बॉल फेंकी जानी है तो आपको क्या लगता है कि उसमें कोई भी बॉल ऐसी है जिसमें आप लिबर्टी ले सकें कि आप किसी भी तरह से फेंक दो? आप लिबर्टी ले लीजिए, हारने की घोषणा खेल खत्म होने से पहले हो चुकी होगी। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? आप रिस्पॉन्सिबल। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी जो बात होती है, जो हमारा दिमाग जो रिसीव करता है, याद रखिए, वो इंटेलेक्ट के लेवल पर रिसीव नहीं करता, वो इमोशन के लेवल पर रिसीव करता है। इंटेलेक्ट के लेवल पर तो वो उसको एनालाइज करता है, कुक करता है। जैसे आपके रसोई में आलू गोभी और मसाले रख दिए गए तो सब्जी तो नहीं बनी है ना, चीजें तो हैं, और पता लगेगा कि 10 लोगों को यही चीजें दे दीजिए और सब्जी बनाने का काम सौंप दीजिए और खा करके देखिए, 10 अलग अलग तरीके से बनाएंगे। रसोई घर वही, सब कुछ वही है, सामान वही है, तो ये चीज अलग अलग क्यों बन रही है? वो क्या है? किताबें सब पढ़ रहे हैं, सिलेबस भी वही है, कॉपी भी वही जांचने वाले हैं, तो नंबर अलग अलग क्यों है? क्योंकि उत्तर एक जैसे नहीं। तो मित्रों, इसी के साथ ही मैं अब आज के अपने इस ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त करता हूं। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।